खबरों से भरे न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दो अहम फैसले आए हैं। एक फैसला तो बिल्डर्स और खरीदारों को लेकर है और दूसरा अपहरण, बलात्कार और शादी के मामलों को लेकर। इन दोनों फैसलों की जानकारी आपको आज के पॉडकास्ट में हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर की जा रही तैयारियों और उसकी अड़चनों पर भी चर्चा करेंगे हम। फिलहाल चलिए चलें सुप्रीम कोर्ट की खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में घर खरीदारों को बड़ी राहत देने वाला फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्डर्स घर खरीदारों को एक तरफा शर्तें मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत फ्लैट बायर्स एग्रीमेंट की एक तरफा शर्तों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। दरअसल एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर बिल्डर ने खरीदार को तय समय पर फ्लैट हैंडओवर नहीं किया तो उसे बायर को पूरे पैसे वापस देने होंगे। यही नहीं, मौजूदा मामले में डेवलपर 9% ब्याज के साथ पूरी रकम लौटाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा है कि अगर 4 सप्ताह के भीतर डेवलपर ने 9% ब्याज के साथ खरीदार को पैसे नहीं लौटाए तो उसे पूरी रकम 12% ब्याज के साथ लौटानी होगी। अपने दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी नाबालिग लड़की की उसकी कथित अपहरणकर्ता के साथ आसक्ति या लगाव को बचाव के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आरोपी के अपराध की गंभीरता की प्रकृति को कम करने जैसा होगा। न्यायमूर्ति एनवी रमन की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा, यह प्रतीत होता है कि वैध बचाव के बजाय याचिकाकर्ता की दलीलें महज हमारी सहानुभूति पाने की कोशिश है, लेकिन यह कानून को नहीं बदल सकता। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे। शीर्ष अदालत ने 23 साल पहले एक नाबालिग लड़की के अपहरण के लिए एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए ये बातें कहीं। आपको बता दें कि इस मामले में लड़की ने सुनवाई के दौरान दावा किया था कि उसे जबरन ले जाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और इस व्यक्ति से शादी के लिए मजबूर किया गया, लेकिन बाद में जिरह के दौरान उसने उस व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध होने की बात भी स्वीकार की थी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाई गई नेशनल कोविड टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर विनोद पाल ने बताया कि रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन जल्द ही भारत में इमरजेंसी यूज के लिए अप्लाई कर सकती है। समाचार एजेंसी राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि स्पुतनिक वी के आखिरी फेज का ट्रायल भारत में चल रहा है। इसके नतीजे आने पर स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज के लिए आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत किसी भी वैक्सीन प्रोटेक्शन को देश में इमरजेंसी यूज की अनुमति तभी देगा जब उसकी लोकल स्टडी हुई हो। भारत ने जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति दी है उसके ट्रायल भारत में हुए थे। दिल्ली समेत देश भर में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। दिल्ली में इसके लिए 89 यानी 89 सेंटर बनाए गए थे, लेकिन अब सरकार ने इन सेंटरों में से 14 सेंटर कम कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि अभी कम सेंटरों में ही काम चल सकता है। इस बीच नगर निगम शिक्षक संघ ने वैक्सीन लगाने के काम में मदद नहीं करने की घोषणा की है। शिक्षक संघ का कहना है कि पिछले 5 माह से उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया गया है, बावजूद वे अभी तक कोविड ड्यूटी करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपनी बकाया राशि की भुगतान करने की अपील करते हैं, अन्यथा हम टीकाकरण अभियान के दौरान खुद को टीका लगवाने में मदद नहीं करेंगे। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद स्वागत रॉय ने कहा कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में बीजेपी के खिलाफ हैं तो उन्हें सांप्रदायिकता और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। ममता बनर्जी ही बीजेपी के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष राजनीति का असली चेहरा हैं। तृणमूल कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर राज्य कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमें तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की इच्छुक हैं तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का एकमात्र देशव्यापी मंच है। कांग्रेस और तृणमूल की इस बयानबाजी पर बीजेपी ने कहा कि तृणमूल की यह पेशकश दिखाती है कि वह पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव में अपने दम पर भगवा पार्टी का मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं रखती है। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रूपेश सिंह हत्याकांड में अहम सुराग मिलने का दावा किया जा रहा है। वारदात के दूसरे दिन पुलिस अधिकारी सीसीटीवी फुटेज के सहारे मामले की गुत्थी सुलझाने में उलझे रहे। पटना पुलिस की टीम एयरपोर्ट पर करीब 8 से 10 घंटे रही, जहां उसने कई कर्मचारियों से पूछताछ करने के अलावा सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश के पोस्टमार्टम के दौरान उनके हाथ और सीने पर 12 से ज़्यादा जख्म के निशान मिले हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो रूपेश हत्याकांड में मुंगेर निर्मित पिस्टल और 7.65 mm की गोलियों का प्रयोग किया गया है। इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि अपराधियों ने पहले दूर से निशाना बनाया और फिर कार का शीशा टूटने के बाद सीने में सटाकर गोलियां मारी गईं। मुरैना जहरीली शराब कांड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक्शन लगातार जारी है। कलेक्टर और एसपी को हटाने के बाद उन्होंने मुरैना के बागचीनी थाने के सभी पुलिस कर्मियों को हटाने का निर्देश जारी किया है। इसी थाने के अंतर्गत जहरीली शराब का यह तांडव हुआ है, जिसमें अभी तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने बुधवार को सीएम हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इसमें प्रदेश के मुख्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुरैना केस को गंभीर मामला बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना के कलेक्टर अनुराग वर्मा और एसपी अनुराग सुजानिया को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश जारी किया था। साथ ही एसडीओपी सुरजीत भदौरिया को सस्पेंड करने को कहा था। आज मकर संक्रांति है, इस मौके पर गंगा स्नान के महत्व को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से व्यवस्था चौकस रखने का निर्देश जारी हुआ है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक ट्रैफिक प्लान तैयार किया है ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। मकर संक्रांति स्नान पर्व के लिए ट्रैफिक प्लान जारी करते हुए यहां 13 जनवरी की रात से 2 दिन के लिए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली व मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले निजी वाहन लंढौरा से वाया लक्सर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहीं सहारनपुर की ओर से आने वाले वाहनों को भगवानपुर से झरबेड़ा होते हुए लंढौरा लक्सर मार्ग से हरिद्वार भेजा जाएगा। कहा गया है कि रोडवेज बसों के लिए यह डायवर्जन केवल यातायात का दबाव बढ़ने पर लागू होगा। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषिकों देविदा। नमस्कार दोस्तों।